Hare Krishna. आप सब बोलिए हरे कृष्णा
हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे
हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे। ये है हरे कृष्णा महामंत्र। ये महामंत्र आप जपते हैं? आप में से कौन कौन हरे कृष्ण महामंत्र नियमित रूप में जपते हैं? हाथ उठाइए। वेरी गुड। हरे कृष्ण, तुम कितनी माला जपती हो? हाँ? हरे कृष्ण। ये हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब क्या है? जिस मंत्र का जप या कीर्तन करने से हम इस भौतिक जगत से मुक्त होकर भगवान के पास वापस जा सकते हैं, ये है इस महामंत्र का प्रभाव। आप सब यहां पर ही रहना चाहते हैं यहां, या भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं? हाँ हाँ, भगवान, पहले सवाल मैं पूछूंगा, भगवान है या नहीं? हाँ, भगवान है, नहीं तो ये सारे संसार का सृष्टि कैसे हुआ है? ये सारे संसार, ये जगत का सृजन और पालन कैसे हो रहा है? जैसे अगर हम पूछेंगे कि ये मकान किसी ने बनाया है ना, क्या ऐसे ही ये मकान आ गया? ये जो मकान है जहां हम बैठे हैं, कोई इसको बनाया होगा? हाँ, ये मकान अगर किसी ने बनाया होगा तो ये पृथ्वी को किसी ने जरूर बनाया है। कौन बनाया? हाँ, भगवान सारे संसार की सृष्टि करने वाला है। और भगवान के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो इसका सरल उपाय है, भगवान के विषय में जहां वर्णन हुआ है उस ग्रंथ को, उस शास्त्र ग्रंथ को पाठ करना। भगवान के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो उस विषय पर बहुत सारे ग्रंथ हैं। किसी भी विषय में अगर हम जानना चाहते हैं तो उस विषय के आधार पर हमें पढ़ाई करना होता है। पढ़ाई करने के लिए किताबें रहता है। तो वैसे ही भगवान के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो भगवान के बारे में भी बहुत सारे किताबें लिखे हुए हैं, जिसे वेद कहा जाता है। वेद है हमारे शास्त्र ग्रंथ। ये वेद के आधार पर जिस शास्त्र में भगवान के बारे में वर्णन होता है उसे वेद कहा जाता है। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। भगवान और आध्यात्मिक जगत के बारे में जो ज्ञान है उसे ही वेद कहा जाता है। और सारे वेदों का निचोड़ है भगवद गीता। और उस भगवद गीता को महात्म्य, भगवद गीता के महात्म्य इतना अधिक क्यों है? क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि वो कौन है। भगवान खुद अपने बारे में बोल रहे हैं। इसलिए अगर हम भगवान के बारे में जानना चाहते हैं तो भगवान भगवद गीता के आधार पर ही भगवान के बारे में जानना सबसे बेहतर है और सबसे सरल है। भगवद गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? आप में से भगवद गीता कौन कौन पढ़ते हैं, हाथ उठाइए। अच्छा, यहां बस आप लोग नहीं पढ़ते हैं भगवद गीता? अच्छा, भगवद गीता के बारे में कौन कौन जानते हैं, हाथ उठाइए। आप लोग भगवद गीता के बारे में नहीं जानते हैं? हाँ, आप नहीं जानते हैं? आप तिलक पहने हुए जानते हैं? तो मैं क्या पूछ रहा था, भगवद गीता कौन पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं? नहीं। भगवद गीता के बारे में जानते हैं तो हाथ क्यों नहीं उठा रहे हैं? अब सही रूप से हाथ उठाइए, जो जानते हैं हाथ उठाइए। हाँ हाँ, ऐसे हम जो कह रहे हैं उसको कुछ जवाब देना चाहिए आप लोगों को, नहीं तो मैं कितना क्यों यहां आए हैं आपके साथ बातचीत करने के लिए ना। मैं बात कर रहा हूं, आप नहीं सुनते हैं तो हमको क्या कैसा ये होगा? हाँ, हमको इंस्पिरेशन मिलेगा? अच्छा, तो भगवद गीता के बारे में हमें, अगर भगवद गीता क्या है, भगवद गीता महाभारत का एक अध्याय है। महाभारत क्या है? महाभारत है भारत का इतिहास। भारत क्या है? भारत है ये भूखंड जिस पवित्र स्थान में भगवान के बारे में चर्चा होता है, आध्यात्मिक ज्ञान का विषय में चर्चा होता है, वो है भागवत महाभारत। और वो है भारत वर्ष। भारत, ये भूखंड को भारत इसलिए कहा जाता है। तो इस भारत भूमि के जो इतिहास हैं वो है महाभारत, अर्थात महान भारत भूमि का इतिहास। इतिहास का मतलब क्या है? जिस स्थान के शासन करने वाले राजाओं का वर्णन, उन्होंने कौन कौन राजा ने इस स्थान पर शासन किए थे और इस स्थान पर अपना महिमा को स्थापन करके इस स्थान को उन्नति और प्रगति साधन किए थे, उसका वर्णन को ही इतिहास कहा जाता है। इतिहास या इतिवृत्त्य। तो वैसे ही महाभारत भारत का इतिहास है। तो भारत का ये जो इतिहास महाभारत में वर्णन हुआ है, वहां चंद्र वंश का वर्णन हुआ है। महाभारत में कौन कौन राजाओं का वर्णन हुआ है आप सब जानते हैं, जैसे सोम, चंद्र वंश का चंद्रदेव है सोमदेव, ये है सोमदेव का वंश। सोमदेव का पुत्र है बुध, बुद्ध से वैसे पुनर्वा आदि बहुत सारे महान राजाओं ने इस परिवार में जन्म लिए थे और इस स्थान को महाभारत भूमि के ऊपर उन्होंने अपना आधिपत्य विस्तार किए थे। और इस वंश में ही शांतनु नाम के एक महान राजा का आविर्भाव हुआ था। शांतनु का पुत्र कौन था बताए? हाँ, भीष्म। केवल भीष्म ही था या और कोई? और दो पुत्र था, कौन थे वो? हाँ तुम बताओ। वेरी गुड। हाँ, चित्रांगद और विचित्र वीर। हाँ, भीष्म का जन्म हुआ था गंगा के पुत्र के रूप में। हाँ, शांतनु के साथ गंगा का विवाह हुआ था और शांतनु का गंगा से जो पुत्र हुआ था उसका नाम है, उसका नाम था क्या? पहले नाम था देवव्रत। हाँ, देवव्रत। और उनने इतना भीषण एक प्रतिज्ञा किए थे उसके कारण उनका नाम हुआ था भीष्म। अच्छा, भीष्म तो ब्रह्मचारी था। हाँ, भीष्म ने प्रतिज्ञा किया था कि कभी भी वो शादी नहीं करेंगे। तो ये जो प्रतिज्ञा, ये एक भीषण प्रतिज्ञा था, इसलिए देवताओं ने बताने लगे कि ये भीष्म कितना भीषण एक प्रतिज्ञा ये किए हैं। इस कारण उनका नाम बन गया था भीष्म। और शांतनु के साथ सत्यवती का भी विवाह हुआ था और उस सत्यवती के पुत्र के रूप में चित्रांगद और विचित्र वीर्य का जन्म हुआ था। ये सब आपको याद है ना? हाँ, कौन कौन जानते हैं, हाथ उठाइए। इस विषय में, इस संदर्भ में मैं जो बोल रहा था। हाँ, मैं आप लोगों को जब हाथ उठाने के लिए बोलते हैं कि आप शर्माते हैं, अगर शर्माते हैं तो मैं नहीं पूछूंगा हाथ उठाने के लिए। हाँ, मैं पूछ रहा हूं इसलिए ताकि हमको पता चले आप समझ रहे या नहीं। आप लोग समझ रहे हैं? हाँ ना, क्या मेरा हिंदी इतना खराब है कि वो आप समझ नहीं रहे हैं? हाँ, तो क्या मैं अंग्रेजी में बोलूं? हाँ, अंग्रेजी में बोलने से हमारा आसान होगा, हमारे लिए ये सहज होगा। और यहां आप लोग को, आप बताइए, हिंदी में बोलूंगा या अंग्रेजी में बोलूंगा? हिंदी में। अच्छा, तो आप हाथ क्यों नहीं उठाते हैं? मैं जो पूछ रहा हूं कि महाभारत की कहानी, महाभारत के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं? ये जानना जरूरी है ना। ये आप कौन देश के वासी हैं? आप लोग भारतवासी हैं, तो भारत की इतिहास आप लोग को जानना चाहिए। तो आप बताइए, महाभारत आप कौन कौन पढ़े हुए हैं? टीवी में महाभारत सीरियल कौन कौन देखे हैं? हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा, ठीक है, वो या टीवी में देखे या पढ़े, किताबें पढ़े, एक ही बात है। असल में बात यह है कि उस विषय जो वर्णन हुआ है, जिस विषय में, उस विषय को समझना। तो महाभारत में जो ये जो वर्णन हुआ है, शांतनु का दो पुत्र चित्रांगद और विचित्र वीर्य। तो चित्रांगद और विचित्र वीर्य किसके पुत्र थे? शांतनु के। बहुत अच्छा। तो बचपन में ही, युवावस्था में ही चित्रांगद का मृत्यु हो गया था और विचित्र वीर्य के साथ काशीराज का दो कन्या का विवाह हुआ था। वो दो कन्या का नाम क्या था? हाँ, अंबिका और अंबालिका। बहुत अच्छा। हाँ, तो अंबिका और अंबालिका, इनका जो पुत्र हुआ था उसका नाम क्या था? हाँ, हाँ, अंबिका और धृतराष्ट्र और पांडु। तो धृतराष्ट्र का पुत्र का नाम क्या था? दुर्योधन आदि 100 पुत्र धृतराष्ट्र का था। और पांडु का कितने पुत्र थे? 5 पुत्र थे। बहुत अच्छा, अब थोड़ा आसान हो गया शायद। ये महाभारत की कहानी सबको ही, आप सबको ही भली भांति पता है। तो धृतराष्ट्र का और पांडु का दो जो पुत्र थे, उस पुत्र के बीच कलह होना शुरू हुआ। पांडव ने धार्मिक थे, परंतु दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र का जो पुत्र था वो सब अधार्मिक थे। इसलिए धर्म और अधर्म के बीच एक संघर्ष हुआ था। धर्म और अधर्म के बीच ऐसे संघर्ष होता है। ये संघर्ष के कारण कुरुक्षेत्र का रण क्षेत्र में एक युद्ध का आयोजन हुआ था। ये युद्ध जब शुरू होने वाला था, तब अर्जुन जब देखा कि अपने रिश्तेदारों के साथ, मित्रों के साथ उसको लड़ाई करना होगा और इस लड़ाई में उनको हत्या करना होगा, तो उसका मन में बहुत कष्ट हुआ और अर्जुन तब लड़ाई करने में इनकार कर दिया। परंतु अर्जुन का रथ का जो सारथी उस समय थे, अर्जुन का रथ का सारथी कौन थे? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण भगवान तब अर्जुन को समझाने लगा। अर्जुन को समझाया, देखो अर्जुन, तुम तो लड़ाई नहीं चाहता, लड़ाई कौन कोई भी नहीं चाहता, और इस लड़ाई, इस युद्ध ना होने के लिए बहुत सारे चेष्टा हुआ था, पर दुर्योधन आदि कौरव ने उसको ये जो निर्देश था, ये जो प्रयत्न प्रयास था, इसको नहीं माना और ये लड़ाई अवश्यंभावी हो गया था। तब अब जब लड़ाई करने के लिए सब यहां एकत्रित हुए हैं, तो अब लड़ाई छोड़ के जाना समुचित नहीं होगा, क्योंकि एक क्षत्रिय अगर रण क्षेत्र से भाग जाता है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा कलंक है, अपजश है, और ये अपजश प्राप्त नहीं होना चाहिए। फिर भी अर्जुन ने बोलने लगा और कृष्ण को, हे कृष्ण, ये अपना अपना स्वजन और मित्रों को हत्या करके ये राज को भोग करना मेरे लिए संभव नहीं होगा। अर्जुन ने बताया कथं भीष्मं अहं संखे द्रोणं च मधुसूदन ईशु भी प्रतियोत्स्वामी पूजार्ह वरिसूदन। कैसे मैं भीष्म जो मेरा पितामह हैं और द्रोणाचार्य जो मेरे गुरु हैं उनके प्रति मैं ये बाण फेंकूंगा, बाण निक्षेप करूंगा। ईशु भी प्रतियोत्स्वामी, क्योंकि उन्होंने पुजारह, वो हमारे पूजनीय हैं, पूजनीय जनों को सम्मान करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, उनके साथ लड़ाई नहीं करना चाहिए। तो ऐसे जब अर्जुन ने कहने लगा, फिर भी अर्जुन का मन में ये भावना आया कि जो विचार मैं कर रहा हूं ये शायद सही नहीं है। इसलिए अर्जुन ने अंत में कृष्ण को बोला, हे कृष्ण, मुझे पता नहीं है मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपना दिमाग को खो बैठे हैं, तो आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। मैं आपको गुरु के रूप में ग्रहण करके आपके पास शिष्य की तरह अपने आप को समर्पण कर रहा। शिष्यस्ते अहं, मैं आपका शिष्य हूं। साधि मांगतां प्रपन्नम, मैं प्रपत्ति कर रहा हूं आपके पास, मतलब अपने आप को आपके पास समर्पण कर रहा हूं। आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। तब भगवान अर्जुन को बताया, देखो अर्जुन, तुम बहुत ज्ञानी व्यक्ति जैसे बातें कर रहे हो, परंतु सही ज्ञान तुम्हारा नहीं है। अशोचान अनुशोचस्त्वं प्रज्ञावादंश्च भाषशे गतासूना गतासुंश्च नानु शोचन्ति पंडिता। तुम जिस विषय में शोक करना नहीं चाहिए, अशोचान अनुशोचस्तं, उस विषय पर तुम शोक कर रहे हो, और प्रज्ञावादंश्च भाषशे, और पंडित जैसे बातें कर रहे हो। जो असल पंडित जो हैं वो इस विषय में शोक नहीं करते, क्योंकि जो वस्तु अनित्य है उस विषय में शोक करना नहीं चाहिए, और जो वस्तु नित्य है उस वस्तु के विषय में ज्ञान प्राप्त होने से ये अनित्य वस्तु के बारे में शोक नहीं होता है। ये अनित्य वस्तु क्या है? अनित्य वस्तु है शरीर, और नित्य वस्तु क्या है? आत्मा। आत्मा नित्य है और शरीर नाशवान है। आज या कल या 100 साल के बाद ये शरीर नष्ट हो जाएगा, ये शरीर हर समय के लिए नहीं रहेगा। तो ये शरीर के बारे में, ये शरीर का मृत्यु होगा, शरीर का नाश होगा, इसके बारे में शोक करना पंडित के लिए समुचित नहीं है। आत्मा के बारे में जब हम ज्ञान प्राप्त होते हैं, जब हमें सही रूप से पता चलता है कि आत्मा नित्य हैं, हमारे असल स्वरूप में हम आत्मा हैं, और इस आत्मा का नाश कभी नहीं होता है और ये शरीर नाशवान है। ये शरीर आत्मा का एक आवरण है। आदमी जैसे कपड़ा पहनते हैं वैसा ही ये शरीर आत्मा का एक आवरण है। और ये शरीर ग्रहण करना और त्याग करना ये कपड़ा बदलने का ही समान है। ऐसे अर्जुन को भगवान भगवद गीता के शुरू शुरू में समझाने लगा। और इसके पश्चात भगवान अर्जुन को समझाया, अर्जुन हर व्यक्ति का स्वरूप आत्मा है, हर व्यक्ति का ही स्वरूप आत्मा है और वो आत्मा अविनाशी है। आत्मा का कभी भी नाश नहीं होता। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, कोई अस्त्र के द्वारा आत्मा को काट नहीं जा सकता। आत्मा को छिन्दन्ति, छेद करना मतलब आत्मा को काटा नहीं जाता। नैनं दहति पावकः, आग के द्वारा इस आत्मा को जलाया नहीं जा सकता। नायं क्लेदयन्तु अपो, पानी के द्वारा इस आत्मा को भिगाया नहीं जा सकता। और नायं शोषयति मारुतः, वायु के द्वारा आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता। आत्मा अविकारी है, आत्मा का कभी किसी प्रकार का विकार नहीं होता है। जिस रूप में आत्मा है, आत्मा हर समय वैसा ही रहता है। आत्मा का न तो नाश होता है न तो कभी परिवर्तन भी होता है। ये समझाते हुए भगवान अर्जुन को बताया, देखो अर्जुन, ये शरीर का परिवर्तन होता है। शरीर में बचपन, यौवन अवस्था, युवावस्था, बुढ़ापा आता है, ये शरीर का परिवर्तन होता है, परंतु आत्मा का कभी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 5 साल का आप और 25 साल के आप और 50 साल के आप, आपका शरीर का परिवर्तन हुआ है ना। 5 साल के जब थे तब एक छोटा शरीर था, 25 साल के समय में शरीर युवावस्था प्राप्त हुआ, शरीर में जवानी आया, और 50-60 साल के शरीर में बुढ़ापा आ जाता है। तो ऐसे शरीर का परिवर्तन होता है, परंतु हमारा परिवर्तन होता है। 5 साल का मैं, 25 साल का मैं और 50 साल का मैं एक ही मैं हूं, है ना। तो वो मैं कौन है, वो मैं कौन हूं, वो मैं जिसको मैं कहता हूं वो है आत्मा। उस आत्मा से ही चेतना का उद्भव होता है। हम जीवित हैं, हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं, इसका मतलब क्या है, हम में जीवन है, मतलब इस शरीर में जीवन है, हाँ ये शरीर जिंदा है। तो ये शरीर का जिंदा रहना का, जिंदा होने का कारण क्या है, क्योंकि इस शरीर में आत्मा है। जो भी शरीर जिंदा है उसमें भी आत्मा है, और जब आत्मा शरीर छोड़कर चला जाता है, कम महामन प्रभु कम,
Come sit here. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. I am very happy that you came.
आप सब महामन प्रभु को जानते हैं हाँ? ये इस्कॉन इंदौर का प्रेसिडेंट है और यहाँ का आरजी भी है, रीजनल गवर्निंग बॉडी कमिश्नर। आने वाला नहीं था पर मैं बुलाया कि आपको आना ही पड़ेगा। थैंक यू फॉर कमिंग। तो आप हाँ, ये शरीर कब तक जिंदा रहता है? जब तक शरीर में आत्मा रहता है। जब शरीर से आत्मा निकल जाता है तो शरीर का मृत्यु होता है। तो जन्म और मृत्यु का मतलब क्या होता है? जब आत्मा नया शरीर को ग्रहण करता है तो उसे जन्म कहा जाता है, और जब आत्मा शरीर छोड़कर चला जाता है तो उसे मृत्यु कहा जाता है। तो ये शरीर का, शरीर में जीवन का मतलब क्या होता है? जब तक शरीर में चेतना रहता है। जब चेतना निकल जाता है तब शरीर का मृत्यु होता है। तो ये चेतना कहां से आता है? ये चेतना आत्मा से। तो वैसे भगवान अर्जुन को भगवद गीता का शुरू शुरू में समझाया, आत्मा और इस भौतिक शरीर में अंतर क्या है। अर्जुन को शोक क्यों हो रहा था? क्योंकि अर्जुन सोचने लगा कि इनको मारना होगा। मेरे जो रिश्तेदार हैं, मेरे स्वजन हैं, मेरे मित्र हैं, इनको इस रण क्षेत्र में, लड़ाई में उनको सबको हत्या करना होगा। बल्कि कृष्ण ने क्या समझाया? हत्या किसका होता है? शरीर का होता है, परंतु आत्मा अविनाशी है, आत्मा नित्य है। और भगवान अर्जुन को लड़ाई करने के लिए क्यों कन्विंस किया, क्यों ऐसे दृढ़ता के साथ अर्जुन को बताया? क्योंकि ये लड़ाई अब होना ही है। ये लड़ाई ना तो पांडव ने चाहा था, कौरव पक्ष का जो प्रवीण व्यक्ति थे, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर, ये सब दुर्योधन को समझाया, धृतराष्ट्र को समझाया कि ये लड़ाई मत करो, तो तब उन्होंने नहीं सुना है। तो अब ये लड़ाई अवश्यंभावी हो गया है, ये लड़ाई अब होना ही है। और तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय होने के कारण ये लड़ाई करना तुम्हारे लिए जरूरी है, क्योंकि रण क्षेत्र में आकर क्षत्रियों को भागना नहीं चाहिए। इसके द्वारा भगवान अर्जुन को समझाया कि अपना कर्तव्य पालन करना ही जीवन का परम उद्देश्य है। इस कर्तव्य किस आधार पर विचार होता है, निर्णय होता है? इस कर्तव्य का निर्णय होता है वर्णाश्रम की आधार पर। चार वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चार वर्ण के जो मनुष्य हैं, उसने उनको अपने अपना वर्ण के अनुसार कार्य करना चाहिए। ब्राह्मण का कार्य है दान और शिक्षा दान, विद्या दान और वस्तु दान करके समाज को सही रास्ता दिखाना। क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है? समाज को रक्षा करना। वैश्य का कर्तव्य क्या है? कारोबार करना करके समाज में जिस वस्तु का प्रयोजन है उस वस्तु को सप्लाई करना, और शूद्र का क्या काम है, सेवा सेवा करना। तो ये है चार वर्ण का कर्तव्य। ब्राह्मण का जो कर्तव्य है वो उनको करना चाहिए, क्षत्रिय का भी, वैश्य का भी और शूद्र का भी। इनको कभी इन अपना कर्तव्य को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो तुम चूंकि तुम क्षत्रिय हो और जब रणक्षेत्र में आ गए हो लड़ाई करने के लिए, तब यहां से भागने का, ये रणक्षेत्र को छोड़कर चले जाने का कोई प्रश्न नहीं हो सकता है। तुम जब आए हो लड़ाई करने के लिए, तुमको लड़ाई करना पड़ेगा। और ये लड़ाई का मतलब क्या है, या तो तुम शत्रु को हत्या करोगे, नहीं तो खुद तुम मृत्यु को वरण करोगे। और भगवान बताया जब क्षत्रिय अपना धर्म पालन करते हैं तो उसका फायदा क्या होता है, तुम अगर ये लड़ाई में, इस संग्राम में अगर तुमको जय होगा तब तुम पृथ्वी को भोग करोगे, और अगर तुमको मृत्यु होगा इस संग्राम में, इस रणक्षेत्र में, तब तुम स्वर्गलोक को प्राप्ति होगा। तो इसमें हर्ज कोई नहीं है। अगर हम जिएंगे तो इस जगत को भोग करेंगे, अगर मृत्यु होगा तो स्वर्गलोक को भोग करेंगे। तो ये समझाते हुए भगवान अर्जुन को अपना कर्तव्य पालन करने का निर्देश देकर आध्यात्मिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया। संक्षेप में गीता का मूल विषय है आत्मा और शरीर का अंतर। आत्मा का स्वरूप निर्णय, आत्मा क्या है, हम बोलते हैं आत्मा, परंतु असल में आत्मा क्या है, ये हमें भगवान बहुत सुंदर रूप में समझाया। भगवान बताया कि आत्मा ऐसी एक वस्तु है जिसका कभी नाश नहीं होता है, आत्मा अविनाशी है। किसी अस्त्र के द्वारा, या तो अग्नि के द्वारा, या पानी के द्वारा, या हवा के द्वारा आत्मा को विनाश संभव नहीं है। अर्थात आत्मा अविनाशी है और हम सब आत्मा हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम सब भी अविनाशी हैं, परंतु जब हम अपना शरीर को अपना स्वरूप समझते हैं तब तक ही हमारा मृत्यु होता है। बल्कि मृत्यु किसका होता है, मृत्यु शरीर का होता है। मृत्यु का मतलब क्या है, मैं ये पहले ही बता चुका हूं, मृत्यु का मतलब आत्मा शरीर से आत्मा को त्याग, आत्मा को शरीर को त्याग करने को ही मृत्यु कहा जाता है। तो मृत्यु किसका होता है, शरीर का मृत्यु होता है, आत्मा का मृत्यु नहीं होता है। और हमारे स्वरूप में हम कौन है, हमारे स्वरूप में हम सब कौन है, आत्मा है। अच्छा, हम सब आत्मा है, आत्मा का मृत्यु नहीं होता है, तो हम लोगों का मृत्यु होगा नहीं। हाँ, तो देखिए कितना सहज आसानी से हम अमरत्व प्राप्त हो सकते हैं। हाँ, ये केवल ज्ञान की सवाल है, अपने आप को पहचानने का सवाल है। अगर हम अपने आप को पहचान लिया तो हम जन्म मृत्यु से परे हो जाते हैं। तो वैसे भगवान पहले आत्मा और शरीर का अंतर के बारे में अर्जुन को समझाया। और इस भौतिक जगत क्या है, इस विषय में भगवान अर्जुन को समझाया। इस भौतिक जगत क्या है, इस भौतिक जगत के बारे में भगवान बताया कि इस भौतिक जगत केवल 8 पदार्थ के द्वारा इसका रचना हुआ है। वो 8 पदार्थ क्या है, वो 8 पदार्थ हैं भूमि रापो अनल वायु खं मनो बुद्धि एवच अहंकार। अर्थात मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। इस आठ पदार्थ के द्वारा इस भौतिक जगत का रचना हुआ है। जैसे हम अगर अपना शरीर के बारे में अगर सोचेंगे तो ये शरीर कैसे पैदा हुआ, शरीर का रचना कैसे हुआ है? पंचभूत से बना हुआ है। पंचभूत का मतलब क्या है? मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंचभूत से ये शरीर का रचना हुआ है। और आपका शरीर में, हम सबका शरीर में और एक शरीर है जिसका रचना हुआ है मन, बुद्धि और अहंकार के द्वारा। आप सबको मन है ना, बुद्धि भी है और अहंकार, ये तीन सूक्ष्म पदार्थ के द्वारा हमारा एक सूक्ष्म शरीर का भी रचना हुआ है। तो वैसे हमारा दो प्रकार का जड़ शरीर है, भौतिक शरीर है, एक है स्थूल शरीर और एक है सूक्ष्म शरीर। यह स्थूल शरीर को तो हम देखते हैं परंतु सूक्ष्म शरीर का दर्शन नहीं होता, हम देख नहीं सकते, परंतु इसका अनुभव होता है ना। आप अनुभव करते हैं कि आपका मन है, मन जो है इसमें किसी को कोई शक है? नहीं। मन है, बुद्धि भी है और अहंकार। अहंकार का मतलब ये शरीर को अपने आप समझना, ये शरीर को अपना स्वरूप जो समझना का जो भ्रांति है उसको अहंकार कहा जाता है। और इस कारण हम इस भौतिक जगत को भोग करने का कोशिश करते हैं। तो ये मन, बुद्धि, अहंकार के द्वारा जो सूक्ष्म शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर के माध्यम आत्मा इस भौतिक जगत में भ्रमण करता है। हमारा जब मृत्यु होता है तब आत्मा, मृत्यु का मतलब क्या है? इस भौतिक शरीर को छोड़ के आत्मा को निर्गमन। आत्मा जब भौतिक शरीर को छोड़कर चला जाता है तो इस स्थूल भौतिक शरीर का मृत्यु होता है, परंतु सूक्ष्म शरीर रह जाता है, सूक्ष्म शरीर का मृत्यु नहीं होता है, जिसको प्रेत शरीर कहा जाता है। मृत्यु के पश्चात क्या होता है? यह सूक्ष्म शरीर के आधार पर आत्मा अपना अगला शरीर में चला जाता है। अब ये सूक्ष्म शरीर को लेकर, ये सूक्ष्म शरीर के अनुसार अगला शरीर हमें मिलता है। जैसे हम कार्य करते हैं उसका प्रभाव मन में लगता है। जब हम बुरा काम करते हैं तो मन में कैसा लगता है? मन में मन भारी हो जाता है ना। जब हम बुरा काम करते हैं, अगर कोई भी देखा भी नहीं तो भी हमारा मन में कुछ ये होता है, और जब हम भला काम करते हैं तो कैसा लगता है? भला काम करने से मन हल्का हो लगता है, बुरा काम करने से मन भारी हो जाता है, भला काम करने से मन हल्का हो जाता है ना। तो ऐसे आत्मा की ये मन में या सूक्ष्म शरीर में हमारा कार्य का प्रभाव आता है, और कार्य के अनुसार, कर्म के अनुसार ये शरीर का गठन होता है। जब, जैसे कि जब कोई व्यक्ति बहुत अच्छा एक संत की तरह आचरण करते हैं तो उनका मनोभाव भी संत की जैसा हो जाता है, तो उसके पश्चात उनके जब अगला शरीर मिलता है तो वो शरीर कैसा होता है? वो शरीर दिव्य शरीर होता है। और कोई व्यक्ति अगर सही काम नहीं करते। कोई आदमी ऐसे होता ना, कोई आदमी जानवर के जैसे काम करते हैं, तो उसका सूक्ष्म शरीर भी जानवर का जैसा बन जाता है, और अगला जन्म में उसको कैसा शरीर मिलेगा? एक जानवर का शरीर मिलेगा। ऐसे हमारे कर्म के अनुसार हमारा अगला शरीर प्राप्ति होता है, और उस शरीर के माध्यम हम सुख और दुख भोगते हैं। तो वैसे कर्म का प्रभाव हमारे ऊपर कैसे आता है उसके बारे में भगवान बताया है। और काल, हम जो कार्य करते हैं उसकी स्थिति पर, किस पटभूमि पर उस कार्य का संपादन होता है, काल के ऊपर, समय। हम जो कुछ करते हैं समय के द्वारा ही होता है, और हमारा स्थिति भी समय के अनुसार ही होता है, काल की विचार पर, आधार पर। जैसे कोई व्यक्ति 80 साल जिंदा रहा, इसका मतलब क्या है? 80 साल का मतलब क्या है? काल, समय। उसका जन्म हुआ था एक समय में, और कुछ समय के लिए उन्होंने इस भौतिक जगत में रहे थे, और उसके पश्चात अपना शरीर छोड़कर उन्होंने चले गए। तो ये जो स्थिति है, स्थिति किसके आधार पर हुआ था? काल के आधार पर, समय के आधार पर। और ये सारे संसार के पालन करने वाला, सृष्टि करने वाला, पालन करने वाला, रक्षा करने वाला और विनाश करने वाला कौन है? भगवान, ईश्वर। तो ऐसे भगवान भगवत गीता में इस पांच तत्वों के ऊपर, पांच विषय के ऊपर अर्जुन को समझाए। और अंत में भगवान अर्जुन को समझाया, देखो अर्जुन, ये सारे संसार के मालिक या ईश्वर मैं हूं। ये वर्णन करने के पश्चात अपने स्वरूप को, स्वरूप के बारे में निर्देश देने के पश्चात भगवान द्वादश अध्याय में, भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, और 12 अध्याय में अर्जुन को भगवान अपना विश्वरूप दिखाया। भगवान केवल बताया ही नहीं कि मैं भगवान हूं, मैं परमेश्वर हूं, परंतु भगवान अर्जुन को दिखाया भी कैसे वो परम ईश्वर हैं। उन्होंने ऐसे बताया कि, अर्जुन को दिखाया कि कैसे सारे जगत उनसे ही प्रकट हुआ है, सारे जगत उनके ही आधार पर विराजमान है, और सारे संसार उनमें ही लीन हो जाता है। तो बताइए, सृष्टि के सृजन, पालन और संहार कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। तो जो भगवान ये सारे संसार को पालन कर रहे हैं, हम सबको देखभाल कर रहे हैं, हम सबको सृष्टि किए हैं, हमें पालन कर रहे हैं, अंत में जिनमें हम सब लीन हो जाएंगे, तो वो उनके शरण लेना ही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। जो हमारे सारे देखभाल कर रहे हैं, हम क्या उनको शरण लेंगे या उनको विरोधी बनेंगे? जो हमारे सारे पालन पोषण कर रहे हैं, उनको अगर विरोधी हम बनते हैं तो हमें कोई कभी लाभ हो सकता है? नहीं। परंतु जो सारे संसार को, हर व्यक्ति को, हर प्राणी को पालन पोषण कर रहे हैं, उनको शरण लेने से हमारा कल्याण होता है। तो ये निर्देश ही भगवान का अंतिम उपदेश है। तो वैसे भगवान, भगवत गीता का मूल उद्देश्य क्या है? हमें सिखाना, भगवान हमें सिखा रहे हैं कि कि उनको शरण लेना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। और भगवान क्या प्रतिश्रुति दिए हैं, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, तब मैं तुमको तुम्हारे सारे पापों से रक्षा करूंगा, मुक्त कर दूंगा, मोक्षयिष्यामि। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तुम्हारे जितने सारे कर्तव्य हैं वो सारे कर्तव्य को छोड़कर तुम केवल मेरा शरण ले लो, तब मैं तुमको तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये है भगवद गीता में भगवान का अंतिम उपदेश, और अंतिम उपदेश ही सबसे जरूरी उपदेश होता है। तो भगवद गीता का मूल उद्देश्य क्या है, भगवद गीता का मूल कहना क्या है, हम सबको भगवान को शरण लेना चाहिए, है ना। और भगवान को शरण लेने से सारे पापों का निवृत्ति हो जाएगा, और पाप का निवृत्ति होने से फायदा क्या होता है, पाप का निवृत्ति होने से क्लेश का भी निवृत्ति हो जाता है, क्योंकि जो के क्लेश या कठिनाई, ये सारे क्लेश या कठिनाई पाप के कारण होता है। हम जो कष्ट भोगते हैं उसका कारण है पाप, तो जब पाप नहीं रहता है तब क्या क्लेश रहेगा। तो इसलिए भगवान का शरण लेने से हम हमारे सारे कठिनाई से हम मुक्त हो जाएंगे और हमारा जीवन आनंदमय बन जाएगा। तो ये है भगवद गीता का मूल उद्देश्य। देखिए भगवान कितनी सुंदर रूप से, कितनी वैज्ञानिक धारा में इस ज्ञान हम सबको प्रदान किए, इसलिए भगवद गीता पढ़ना चाहिए। तो मैं शुरू शुरू में पूछा था आप कौन कौन भगवद गीता पढ़ रहे हैं, फिर से आप हाथ उठाइए कौन भगवद गीता पढ़ रहे हैं, आप हाथ उठाइए जो पढ़ रहे हैं। अच्छा, और जो अब से पढ़ना शुरू करेंगे आप सब हाथ उठाइए, बहुत अच्छा। जो पढ़ नहीं रहे हैं भगवद गीता, आप सब आज से भगवद गीता, कल से या आज से ही पढ़ना शुरू कीजिए। भगवद गीता पढ़ने से आपका सही कल्याण, परम कल्याण साधन होगा। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है?